ओम शांति। आज के टॉपिक का शीर्षक है अल्लाह और आदम की एक अनोखी दास्तान। अल्लाह अर्थात शिव बाबा और आदम अर्थात ब्रह्मा बाबा। और हम बच्चे कौन है? दोनों के बच्चे हैं। दास्तान तो उनकी है। दास्तान अर्थात कहानी। उर्दू का शब्द दास्तान, उसको कहानी कहते हैं। तो कहानियां सबको अच्छी लगती हैं। संसार में भी जितने महान विभूतियां हुई हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन चरित्र की अनेक किताबें लिखी गई हैं। और जीवन चरित्र की किताबें या महान भी होते हैं, वही प्रचलित होती हैं जो समाज के लिए कुछ करके जाती हैं, देश के लिए कुछ करके जाती हैं, या कोई भलाई का कर्म करके जाती हैं। उनके चरित्रों को ही आत्मसात करने का हर कोई प्रयास करता है और बहुत प्रेरणादायी होती हैं कहानियां। और उनके जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा भावना, ये सब चीजें समाई होती हैं। तो हमारे ब्रह्मा बाबा के जीवन में कैसे त्याग, तपस्या, सेवा थी और भगवान ने उनके तन में आकर कैसे स्वयं को प्रदर्शित किया, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है तो वो अपने चरित्र को कैसे प्रदर्शित करेगा। इसलिए कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन आदम के नूर से खुदा जुदा नहीं। आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं है तो सही कुछ तो है। आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं हम। तो कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आए, उसके लिए ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही अपने को तैयार कर लिया। वास्तव में 1936 या 37 जो हम कहते हैं स्थापना काल, लेकिन शिव बाबा ने पहले से ही वो तैयारी आना शुरू, ब्रह्मा बाबा के आने में तैयारी शुरू कर दी थी पहले से ही। जो 1932 की हम डायरी पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि कैसे वो भूमि तैयार हो रही थी, क्योंकि सुप्रीम सोल का ज्ञान उनके द्वारा सबको दिया जाना है। तो फिर मन बुद्धि को कैसे बाबा ने एकदम पुराने, जो पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कार, जो भी रिश्ते नाते थे, जहां जहां बुद्धि अटैचमेंट थी, कैसे एकदम खाली कर दिया। क्योंकि जब तक हम खाली नहीं करते हैं, दूसरी दूसरी बातों को भर के रखेंगे तो ऊपर वाले का अमृत भी नहीं बुद्धि में ठहरता है। तो पहले तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि को एकदम बाबा ने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया, ताकि वो अमृत उसमें ठहर सके। जैसे एक बार महात्मा होता है, वो महात्मा जी बहुत साधना करते हैं, साधना करते करते फिर वो शहर में आते हैं, एक दुकान पर जाते हैं, किराने की दुकान पर। हालांकि वो अपनी साधना से इतना संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी साधना करते रहते हैं। लेकिन जब दुकान में पहुंचते हैं तो किराने की दुकान पर पहुंचकर दुकानदार को पूछते हैं, सामान जो उसने रखा होता है, टीन के डब्बे होते हैं, तो पूछता है इस टीन के डब्बे में क्या है, तो वो दुकानदार बताता जाता है इसमें हल्दी है, अच्छा है दूसरे में क्या है, इसमें नमक है, इसमें मिर्ची है, ऐसे पूछता जाता है वो। तो फिर अंत में एक डब्बा होता था, बोला इसमें क्या है, बोला इसमें हवा नहीं, हीरा, और इसमें ईश्वर है। बोला खाली डब्बे में ईश्वर होता है? बोला हाँ, हमारे यहाँ खाली डब्बे को खाली डब्बा नहीं कहा जाता, ईश्वर कहा जाता है। तो वहां तुरंत उसको क्लिक हुआ कि जब तक मेरी बुद्धि खाली नहीं होगी तो ईश्वर कैसे ठहरेगा। ईश्वर वही ठहर सकता है जब पहले से मन बुद्धि को खाली किया होगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने अपने मन बुद्धि को इतना क्लीन और क्लियर कर दिया कि उसको बिल्कुल टचिंग, उनको बिल्कुल टचिंग होती है कैसे बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठता रहा। उसी के आधार पर फिर ब्रह्मा बाबा के जीवन का परिवर्तन होना शुरू हुआ। अनेक प्रकार की विशेषताएं उनके जीवन में आने लगी। उन विशेषताओं के आधार पर कैसे यज्ञ की धीरे धीरे स्थापना हुई। वो छोटे छोटे बच्चे जो संसार से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जिनको नक्शे का पता ही नहीं था, कैसे उनको पैसे का मालूम नहीं था कि कौन कौन से पैसे हैं। तो कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर अपने चरित्र बच्चों के आगे रखे कि कैसे वो विश्व कल्याणकारी है, तो तुम बच्चों को भी कैसे विश्व कल्याणकारी बनना है। तो ये सारे चरित्र ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाबा ने हम सब बच्चों के आगे रखे, क्योंकि जब तक मन बुद्धि खाली नहीं है, हम जो हम चर्चा करते हैं कि जो सबसे ऊंची स्थिति होती है बीज रूप स्थिति, शून्य स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मन बुद्धि बहुत सारे बातों से हमारा किनारा होना जरूरी है। इसी संदर्भ में एक दूसरी कहानी है। एक हिरनी थी, तो जंगल में विचरण कर रही थी, उसको बच्चे को जन्म देना था, और वो जंगल में जगह खोज रही थी कि कहां बच्चे को जन्म दिया जाए। और जंगल में एक तरफ आग लगी हुई थी, दूसरी तरफ नदी थी, फिर आगे जाती है तो आगे एक शिकारी खड़ा है, और पीछे फिर मुड़ के देखती थी तो एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। अब जाए तो जाए कहां, ऐसी चारों तरफ से समस्याओं ने उसको घेर लिया। अब उसके बच्चे को जन्म देना है, अगर वो आगे कदम बढ़ाए तो शिकारी तीर लेके खड़ा है, इस तरफ जाए तो आग है, इस तरफ जाए तो पानी, और पीछे तो शेर है, कहां जाएगी वो? ऊपर जाएगी। हाँ तो उसने अपने को विस्मय तो है ही है, अपने को शून्य स्थिति में कर, जो होगा फिर देखा जाएगा, अर्थात अपने को प्रभु हवाले कर दिया। तो उसी दरम्यान जोर से आसमान से बादल गरजते हैं, बिजली कौंधती है, और अचानक जो शिकारी के हाथ में तीर था उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, तो वो तीर निकलता है और सीधा शेर को लग जाता है और शेर मर जाता है। और जोरदार बारिश तूफान होती है तो जो शिकारी है वही ध्वस्त हो जाता है, और आग पानी से सारी परिस्थितियां जो प्रतिकूल थी वो एक सेकंड में अनुकूल हो गई। कैसे? जब उसने अपने को ईश्वर के अर्पित कर दिया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने भी अपने को संपूर्ण समर्पण कर दिया, ईश्वर के अर्पित कर दिया, तभी तो इतने बड़े यज्ञ की स्थापना हुई। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखते हैं कैसे बेफिक्र वाशा रहे वो। इंसान को फिक्र तब होता है जब कोई कार्य सिरे नहीं चढ़ता है, या सफल नहीं होते हैं किसी कार्य में, या कहीं ना कहीं प्राप्ति की कमी है, या बहुत सारे जीवन में प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, तो मनुष्य फिक्र में पड़ जाता है। लेकिन ब्रह्मा कैसे बेफिक्र वाशा हो गए? क्योंकि सर्व प्राप्तियां होगी, अविनाशी प्राप्तियां, विनाशी प्राप्तियां एकदम समर्पण कर दी, उनको सारा त्याग कर दिया, और अविनाशी प्राप्तियां अर्थात ज्ञान की अविनाशी प्राप्ति, जिस ज्ञान के बल पर इतने बड़े यज्ञ की स्थापना कर दी, छोटे छोटे बच्चों में ऐसा ऊर्जा का संचार कर दिया, ऐसे मन को शक्तिशाली बना दिया कि संसार में समाज के सामने उन बच्चों ने भी लोहा ले लिया, वो छोटे छोटे बच्चे और माँ बाप से भी लड़के तैयार हो गए। तो कैसे परमात्म प्यार उनके अंदर चला गया, कैसे बाबा ने विशेषता उनके अंदर भर दी अपनी स्थिति से। तो ब्रह्मा बाबा के जो जीवन चरित्र है, वो जीवन चरित्र हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक है, बहुत मदद करते हैं। आगे बढ़ने के लिए जब तक हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष एग्जाम्पल नहीं होता है तो मुश्किल होता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा एक ऐसे एग्जाम्पल बन गए जो सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, जिन्होंने नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर लिया। इतनी सारी समस्याएं आई, लेकिन उन समस्याओं से बाबा बिल्कुल घबराए नहीं। ने तो इतनी बड़ी फैमिली है, 400 ब्राह्मणों का परिवार है, सबको पालना, उनकी देखरेख करना, उनकी बीमारी जो भी एक हेल्थ केयर करना, वो सारी चीजें देखते हुए भी कैसे ब्रह्मा बाबा एकदम निश्चिंत बेफिक्र वाशा रहे, नथिंग न्यू की स्मृति मना निश्चय बुद्धि रहे। कितना निश्चय था, इतना प्रबल निश्चय था कि जो है वो तो ऊपर वाले का ही है, कि जीत तो होनी है, कल्प कल्प के विजयी हैं। तो उन बातों के आधार पर कैसे ब्रह्मा बाबा एकदम निश्चिंत हो गए और कैसे शिव बाबा के कार्य को आगे आगे बढ़ाते गए। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र को देखें तो बहुत सारी बातें हम सबको सीखने को मिलती हैं। कैसे बाबा एकांत हो गए, एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार। और हम देखते हैं ये जो चीजें हैं ब्रह्मा बाबा जो के चरित्र हम पढ़ते हैं तो वो हमारे पुरुषार्थ में भी कैसे सहायक होती है। जैसे ही हम एकांत का अनुभव करते हैं तो एकांत में रहने से बहुत सारी अंदर की आत्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। जैसे एकांत में रहने से मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है, बहुत सारी बातों से किनारा होने लगता है और बुद्धि में थोड़ा विचार चलने लगते हैं, क्योंकि एकांत अर्थात एक के अंत में हमने अपने मन बुद्धि को जोड़ दिया है। और धीरे धीरे वो परमात्मा शक्तियों का अनुभव होने लगता है, कैसे पुरानी दुनिया से हमारा वैराग्य होने लगता है, जो अप्राप्तियां थी, जो प्रभु प्राप्तियों से हम वंचित थे, कैसे वो अनुभव होने लगती है, क्योंकि हमने अपने मन बुद्धि को एक के अंत में स्थिर कर दिया है, उसके ऊपर समर्पण कर दिया है। तो जो भी हम ब्रह्मावा के चरित्र को देखें, धीरे धीरे उनको हम आत्मसात करते जाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन सहज हो जाता है, नहीं तो मुश्किल लगता है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं है, इसे तो हमको अपने चरित्र में उतारना है। और ये तभी उतरेगा जब कोई हमारे सामने प्रत्यक्ष सैंपल होता है, उदाहरण होता है, और वो भी सहज रूप से। जितना सहज होता है उतना उसको अमल में लाना भी आसान होता है। हम सब इस बात से परिचित हैं कि जब से हमको बाबा का ज्ञान मिला तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। ये ज्ञान मिलने से या ये अल्लाह का इलम मिलने से क्या हो गया? अल्लाह इलम माना ज्ञान, अल्लाह का इलम मिलने से गूंगा भी बोलने लगा, गूंगे भी बोलने लग पड़े, उनकी भी जुबान खुल गई, जुबान खुल गई, है ना। और लंगड़े को ज्ञान मिला तो वो भी आसमान छूने लग गया, और अनपढ़ को ज्ञान मिला तो वो भी पढ़ने लिखने लग गया, ना कि पढ़ने लिखने केवल पढ़ाने भी लग गया। पहले खुद हमको भी कहाँ आता था इस ज्ञान का, लेकिन आज जो पढ़े लिखे लोग आते हैं तो भी हमारे सामने क्या होते हैं, बाबा कहते तुम कितने VVIP हो, जितने मर्जी लगा लो, और जो भी सामने बाले आते चाहे मिनिस्टर हो कोई भी हो तो समझाते, इसमें हमारे में रहता थोड़ा ऐसा कि ये प्रेसिडेंट है, कुछ भी है, कोई भी है। बाबा कहते तुम तो कितने बड़े हो, आपको प्रेसिडेंट का पद दे दिया तो तुम लेंगे? नहीं, क्योंकि हम तो विश्व के मालिक बनने वाले हैं, विश्व की भाषा लेने वाले हैं। तो जो अल्लाह का इलम है इसने हमारी आंखें खोल दी, हमें चलना सिखा दिया, हमें बोलना सिखा दिया, इस इलम की बदौलत ही हमारे जीवन का परिवर्तन हुआ। तो त्याग तपस्या ये भी हम ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखते हैं, क्योंकि त्याग अति आवश्यक है। एक तो सूक्ष्म और दूसरा स्थूल त्याग। सूक्ष्म तो हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों से परिचित हैं कि स्थूल वस्तुओं का त्याग, जिनकी हमको जरूरत नहीं है जीवन में, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी हमारी वस्तुओं से जुड़ जाती है, हमारा मन उनमें बंध जाता है, भले हम उन वस्तुओं को यूज करें नहीं करें, अगर हमारे पास ऐसे भी पड़ी हैं तो एनर्जी तो हमारी जा रही है वहां भी। इसलिए हम, या आपने भी करके देखा होगा, जो भी चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा है उनको अगर दान दे दिया जाए एक बहुत आत्म संतुष्टता मिलती है, अंदर से एक खुशी मिलेगी, और वो चीजें देने से जो हमारे मन बुद्धि जुड़ा तो बार बार बुद्धि उधर नहीं जाएगी, अगर रखा है तो सारी एनर्जी हमारी उन वस्तुओं में जा रही है। इसलिए साधु सन्यासी तपस्वी जो हैं होते हैं उनके पास इतनी चीजें नहीं होती हैं, तो इन चीजों से स्थूल चीजों का त्याग भी करना आवश्यक है, नहीं तो हमारी बुद्धि उसी में उनको मेंटेनेंस करने में लगी रहेगी, उनमें बार बार जाती रहेगी। दूसरा सूक्ष्म रूप से जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमारी चीजें है नहीं है, जो हमारे अनादि आदि संस्कार हैं, उनकी स्मृति न होकर हम पुराने संस्कारों की अर्थात इस पुरानी दुनिया के संस्कारों, संसार के संस्कारों की, उनको पकड़ के रखे हुए हैं। जैसे बताया था पिछले संडे की मुरली बाबा ने, पर चिंतर परदेशम, जो धूल है वो आत्मा के ऊपर पड़ गई है, तुम बच्चे आते हो यहाँ पॉलिश कराने के लिए, तो अगर हमने वो पकड़ के रखी है तो धूल उतरेगी कैसे? फिर उस धूल को उतारने की बजाय हम दूसरे को कोटेशन देते हैं, ये ऐसा है, ये वो वैसा है, तो ये भी हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं बाधक बन जाता है। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन का त्याग हम देखते हैं कितना त्याग किया। जो कुटिया में बाबा की तस्वीर लगी है तो वहां बटन देखे होंगे, कैसे बटन है, वो तीन बटन दिखाई देते हैं, ऊपर वाले में चार छेद है, नीचे वाले में दो दो छेद है। ऊपर वाला बड़ा साइज का है, नीचे वाले छोटे साइज के हैं। आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट अगर बनाता है तो वो देख रहा है इतनी बड़ी संस्था का बना रहा हूं मैं इसको, तो उसको तो बिल्कुल एक्यूरेट करता है, लेकिन उन बाबा ने उनको टचिंग उसने एजीटी रखा होगा। तो देखो त्याग तपस्या कितनी बड़ी है, छोटी छोटी बातें हैं। तो ये जो चीजें हैं त्याग, ये हमारी तपस्या में बहुत जरूरी है। तपस्या भी हमारी तभी प्रज्वलित होगी, तपस्या की अग्नि तभी प्रज्वलित होगी, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। और बाबा ने और क्या अभ्यास किया, देह में रहते विदेहीपन का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास। क्योंकि जब तक हम इस अभ्यास को आगे नहीं बढ़ाते हैं तब तक हमारा मन बुद्धि एकाग्र नहीं होता है। भले हम बैठे हैं लेकिन बार बार इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, देह से परे विदेही स्थिति के, क्योंकि उस ऊपर की अवस्था में ही आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगेगा। क्योंकि आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं, अनादि संस्कार हैं। तो उन संस्कारों का, उन गुणों का, उन विशेषताओं का अनुभव करने के लिए बार बार हम सबको इस बॉडी से डिटैच होने की जरूरत है। जब तक इस बॉडी से डिटैच नहीं हुए तब तक ये संसार हमको पकड़ के रखा हुआ है, तब तक आत्मा जो है इस संसार के जंजीरों में जकड़ी हुई रहेगी, रिश्तेदार मित्र संबंधी। और जितना हम शरीरपन का अभ्यास करते हैं उतने हमारे बंधन कटते जाते हैं। और उसका परिणाम है या उसका मापदंड ये देखेंगे, अगर हम शरीरपन का अभ्यास करते हैं तो हमें लौकिक के फोन भी कम आएंगे, लौकिक संबंधी भी कम याद करेंगे, क्योंकि हम उसी से ऊपर उठ रहे हैं। अगर हम ज्यादा हम देह में हैं तो देहधारी ज्यादा खुद तो याद आएंगे, लेकिन देहधारी भी हमको बार बार मैसेज करेंगे, पकड़ के रखेंगे। अगर शरीरपन का अभ्यास है तो ऊपर वाला हमको याद आएगा, और जो हमारे लौकिक या कोई भी संबंधी है उनको भी ऊपर वाला याद आएगा। इसलिए कोई कोई लोग कहते हैं ये तो जैसे बाबा है, होते तो हम भाई है लेकिन उनको बाबा ही दिखता है। तो अर्थात जैसे ब्रह्मा बाबा ने देह में रहते विदेहीपन का अभ्यास किया, अशरीरीपन का अभ्यास किया, तो उसी अभ्यास को हमको भी बढ़ाते जाना है। और बात ब्रह्मा बाबा की प्योरिटी की पर्सनैलिटी, कल की मुरली में था होली अंश की बात शायद, हाँ, कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, होली अंश अर्थात रतन चुगने वाले। बाबा ने कहा तुम बगुले नहीं हो, होली अंश हो, तो सबकी विशेषताओं को देखने वाले, व्यर्थ को छोड़ने वाले हो। क्योंकि इतना ऊंचा पवित्र ज्ञान है, अगर इस ज्ञान के साथ हम दूसरे ज्ञान को भी पकड़ के रखेंगे, जो ज्ञान हमारे पुरुषार्थ के लिए ठीक नहीं है, अगर उसको ही पकड़ के रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी शक्तियां लीकेज होती रहेंगी, हमारा समय उसमें जाएगा, वेस्ट एनर्जी जाएगी। तो पवित्रता जो है सबकी विशेषताओं को देखना, हमारे संकल्प जो है दिन प्रतिदिन उनमें सुधार आता जाए, पवित्र संकल्प बनते जाए, शुद्ध संकल्प अर्थात पवित्र संकल्प, शुद्ध संकल्प अर्थात जो भी मुरली का मनन चिंतन है, या नए संकल्प हम क्रिएट करें, नए नए सोमान क्रिएट करें, ताकि हमारे संकल्प भी शक्तिशाली होते जाए। पवित्रता जैसे हमारी जो निजी संपत्ति है उसको हम फिर से पूरी तरह से प्राप्त कर सकें। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन की प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी विशेष हम सबको दिखाई देती रही, तभी तो वो इनकी दूसरों को पवित्रता का पाठ पढ़ाने के लिए सफल रहे, नहीं तो अगर हमारे में खुद नहीं है तो दूसरों को कैसे कहेंगे। इसलिए ये भी अति जरूरी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी को भी हमको जीवन में लाना अति आवश्यक है। और ब्रह्मा बाबा नष्टो मोह उपराम रहे, किसी में मोह नहीं रहा, इतने बड़े परिवार के हैं, राज कुलोचित परिवार, जो राजाओं से महाराजाओं से संबंध संपर्क रहा, और इतनी रॉयल फैमिली है, और कैसे बाबा एकदम नष्ट मोह उपराम हो गए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, धक से छोड़ दिया। उनके बच्चे थे लौकिक में, कैसे उनके प्रति भी कोई मोह नहीं रहा, सब एक समान हो गए जैसे। तो उसी तरह से नष्ट मोह बनने का ये भी एक अभ्यास जो ब्रह्मा बाबा ने हम सबके सामने करके दिखाया, और उसके लिए आत्मा आत्मा भाई भाई की स्मृति, ये ब्रह्मा बाबा का विशेष परिपक्व स्थिति रही जो हम सबको आत्मसात करना है। क्योंकि जब तक हमारा मोह है तब तक हमारा मन बुद्धि उसमें भटकता रहेगा और हम आगे बढ़ने में उतना सफल नहीं होंगे। इसलिए नष्ट मोह उपराम, कोई भी संबंध है हम सबको पता तो छोड़ना तो है ही है, और देह में रहते विदेहीपन का अभ्यास जो पहले बताया बहुत सहज अभ्यास है। जैसे हमको पता है कहीं ना कहीं तो हमारा जो मन है वास्तव में, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन हमारा मन पूरा एकाग्र यहाँ भी नहीं क्लास में। ये क्लास सुनने के बाद सभी को पता है घड़ी की तरफ सबकी नजर तो रहती है विशेष, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? जैसे हमने इस हॉल में प्रवेश किया है, हमको पता है यहाँ थोड़े आधे घंटे के पौने घंटे के लिए प्रवेश किया है, उसी तरह ये बॉडी के अंदर भी हमने प्रवेश किया है, कितने समय के लिए? जितने समय संगम होगा। और अंत में हमारी यहाँ से जाने के बाद स्मृति कहाँ की बनी हुई है? जरूर अपने बुद्धि में अपने अपने डिपार्टमेंट पकड़ के रखे हुए हैं, या कोई ना कोई योजना चलती रहती है, यहाँ से जाने के बाद बाहर निकल के क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जाके क्या करेंगे, आईटी डिपार्टमेंट में जाके क्या करेंगे, कोई ना कोई योजना तो अंदर चली जाती है। ऐसे ही इस देह के हम अंदर बैठे हैं सर्विस के लिए, और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने घर में पहुंचना। जो बाबा ने कल की मुरली में कहा, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है? कर्मातीत और संपूर्ण बनना, फरिश्ता बनना। और उसके लिए दो शक्तियों का बाबा ने जिक्र किया, समेटने और समाने की शक्ति। तो कहां कहां तक हम समेट रहे हैं चीजों को, कहां कहां तक हम चीजों को समा रहे हैं? तो समेट तो सारा पूरे संसार को समेटने अभी, तो ये भी जरूरी है कि हमारा जो लक्ष्य है उस तरफ हमारी स्मृति रहे कि वापस अब हमको लौटना है। तो इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास जो हम सहज कर सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा की साक्षी दृष्टा, यज्ञ में कितनी सारी परिस्थितियां हैं, कई बच्चे छोड़ के चले गए, जो अपने थे वो ही चले गए, कितनी पालना दी उनको, कितना ज्ञान युग से उनको आगे बढ़ाया, लंबे समय तक अपने पास रखा, लेकिन फिर भी बाबा का हाथ छोड़ के चले गए। लेकिन बाबा विचलित नहीं हुए, क्योंकि पार्ट सबका अपना अपना है। नथिंग न्यू की स्मृति से, ड्रामा की स्मृति से बाबा अचल अडोर है। इसी तरह से इस अलौकिक परिवार में, लौकिक को तो हमने छोड़ दिया, ठीक है, उनसे मित्र संबंध से हमारा मोह कुछ हद तक, क्या काफी हद तक खत्म हो गया होगा, लेकिन एक अलौकिक परिवार में कहीं ना कहीं हमारे मन की तारे जुड़ी रहती हैं। तो इसमें भी अगर हमारे पुरुषार्थ में किसी के पुरुषार्थ को हम देखते हैं कि अगर कोई पीछे जा रहा है, तो हमको संकल्प नहीं आने चाहिए कि यूएसए क्यों कर रहा है, क्योंकि सबका अपना अपना पार्ट है। ड्रामा में हमको साक्षी होकर देखना है, लेकिन उस साक्षीपन में हमको शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न रहना है, जैसे ब्रह्मा बाबा की सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रही, ऐसे हम सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, अपनेपन की फीलिंग चाहिए। और जहां अपनेपन की फीलिंग रहती है, वहां बहुत सारी चीजों से मनुष्य सुरक्षित हो जाता है ना। जैसे एक बुढ़िया थी, दादी कहो या दादी या पोतरे कहो, तो हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी, इलाज करवाते लंबे समय तक वहां ट्रीटमेंट होता रहा, तक ठीक नहीं होती थी वो, तो नर्स भी उसको ट्रीटमेंट करती थी आके। फिर एक दिन उसके पोतरे उसके पास में आए, तो पोतरे आके कहते हैं, दादी आज तो मुझे आपके हाथ का भोजन करना है। अब पोतरे सामने आ गए तो उसको इतनी खुशी हुई, क्योंकि आजकल के बेटे तो माँ बाप के पास कम ही जाते हैं, लेकिन पोतरे उसके पास गए, बोला मम्मी तो हमको भोजन कराती नहीं ठीक से, आज हमको आपके हाथ से खाना है। तो जैसे उसके अंदर में ऐसे अपनापन जागृत हुआ कि उसकी बीमारी तो आधी वैसे भूल गई, वो कोई मिलने आया हुआ है। तो जो फिर वो नर्स को कहती है, मुझे थोड़ा नहलाओ, मैं यहां से निकल के पोतरों के पास जाऊंगी। तो नर्स कहती है, आप कैसे उठेंगी? तो देख रही उसके तो पोतरों को देखने से उसमें कैसे एकदम बीमारी की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो फिर उठ के उसने उसको नहलाया धुलाया, पोतरे को भोजन भोजन कराया, तो इतना खुश हो गए कि आधी बीमारी की अब सारी, लगभग बीमारी दो दिन में सारी खत्म होगी। तो माना ब्रह्मा बाबा ने हम सबको कितना अपनेपन की महसूसता कराई कि सारी दुनिया की बीमारियां कैसे भूल गई, नहीं तो कितने सारे चीजों को हमने मन में पकड़ के रखा हुआ था जो मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे। तो सारी बीमारियां अपनेपन से खत्म हो जाती है। और ये वाला अपनेपन वाला अटैचमेंट नहीं है, इसमें न्यारापन है, जितना न्यारा उतना प्यारा। इसलिए बाबा कहते, पुरुषार्थ जो करना है प्यारे वन का नहीं करना है, न्यारे बनने का करना है। जितना न्यारे बनेंगे उतना पुरुषार्थ में प्यारापन स्वतः होता जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा की भी विशेषता रही कि सबको अपनत्व का अनुभव कराया, साक्षी दस्त स्थिति में रहे, और हमेशा एवरडी किसी को पकड़ के नहीं रखा बाबा ने, हमेशा एवरडी हर कार्य में अथकपन रहे, किसी कार्य में थके नहीं, ना उम्मीद नहीं, जैसे कल की मुरली में था, ना उम्मीद नहीं। किसी के प्रति अगर पुरुषार्थ किसी का ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी उनमें उम्मीद की किरण कैसे जगा के रखी? उम्मीद, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बनाया। कोई भी कैसी भी आत्मा है, लेकिन हर एक की आत्मा को की विशेषताओं को कैसे कार्य में लगाया। तो हम सबको भी ये जो चीज है, विशेषताएं जो है, किसी में कोई भी विशेषता है उसको हमको कार्य में लगाने आना चाहिए, ताकि उनका भी भाग्य बन सके। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाकर कैसे आगे बढ़ाया। कोई कैसा ही बच्चा जो संडे की मुरली थी, शायद संडे की नहीं, शायद चंडे आए, जिसमें बाबा ने कहा बाबा दो प्रकार के बच्चों को देखते हैं, एक तो अपने बच्चों को देखते हैं, दूसरा माइयों को देखते हैं। हाँ तो थे तो वो भी बच्चे ही, लेकिन वो कौन से बच्चे होंगे जो बाबा का कहना नहीं मानते होंगे, जो श्री आज भी माइया है, सगे लगे। हाँ तो उस दिन माइयों की बात थी ना। हाँ तो वास्तव वो तो बाबा ने ठीक है कहा, लेकिन है तो अपने बच्चे सारे, वो तो दासी दूसरी दासी वाद की बात है। तो माना कैसे भी बच्चे हैं, कैसे भी संस्कार वाले, लेकिन कैसे सबको समा के चले बाबा, कैसे सबको एकता के सूत्र में पिरो के रखा, और कैसे कैसे सबकी विशेषताओं को इस कार्य में लगाकर आगे बढ़ते गए। तो इन चीजों को बाबा ने कैसे अपने जीवन में आत्मसात किया, और ये सब चीजें जो है इस शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ही सारी प्रखर हुई। नहीं तो विशेषताएं तो बाबा में पहले भी थी, लेकिन जो ईश्वरीय कार्य में लगी है उस शिव बाबा के अवतरण होने के बाद ही ब्रह्मा बाबा ने हम सब बच्चों के सामने विशेषताओं को प्रत्यक्ष किया, और उन विशेषताओं के आधार पर ही हम अपने जीवन को संवार रहे हैं। तो जीवन चरित्र जो बाबा की कहानी है, जीवन को पलटाने वाली, वास्तव में इनको पढ़ने से बार बार पढ़ने से, मैं देखा बड़े दिनों के बाद पढ़ी थी, तो उनको पढ़ने से बहुत सारा मन में परिवर्तन हो जाता है, उसमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं आती है। कैसे हो मन में एक जो आग लग, याद योग अग्नि जो होती है, वो पढ़ते पढ़ते योग जो अग्नि का रूप ले लेता है, उतना प्यार योग में बैठे नहीं उमड़ेगा जितना किताब पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाएगी। तो जीवन को पलटाने वाली है, तो जो जीवन चरित्र की किताबें होती है संसार में भी, कैसे लोग उनको बार बार पढ़ते हैं, उनका जिक्र करते हैं, फलाना होके गया, हम देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले कितना त्याग था उनके जीवन में, अंत में जब उन्होंने अपने कार्यकाल उनका पूरा हुआ तो साथ में क्या लेके गए, लेकिन जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उनके जीवन को देखो कैसे, कितना माल पानी अपने घर वहां से भरभर के लेके गए। लेकिन जो एपीजे अब्दुल कलाम थे एक बैग में आए थे, एक ही बैग में गए। तो संसार में भी ऐसी महान विभूतियां हैं, तो हमारे ब्रह्मा बाबा तो कैसे सारा कुछ त्याग दिया, बच्चों को लगा दिया, पूरे विश्व की सेवा में अर्पित कर दिया। तो हमारे पास भी थोड़ा जो कटपन बचा हुआ है, तन मन धन संबंध जो भी संकल्प है, जो भी हमारे पास जो बाबा का दिया हुआ है अमानत है, हमारा तो अपना है ही नहीं है, तो इसको उसी तरीके से हम समझेंगे तो जरूर बाबा की छत्र छाया के नीचे हम इस जीवन का अतिंद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे, तो इस जीवन ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे, मजे में जी सकेंगे। तो कितनी बातें सुने, टाइम है। निश्चय बुद्धि, एवर रेडी, बेफिक्र वाचा, एकांत के साथ मिलनसार, जितना वायु मुक्ता में आना सहज लगता है उतना अंतर मुक्ता में आना सहज लगे। कल का स्लोगन था क्या था दीपाली बहन, कल का स्लोगन क्या था, ड्रामा में नूंद हो गया, लेकिन क्या था, अंतर्मुखता से रिलेटेड था, वो बहुत अच्छा स्लोगन था। हाँ तो सर्व की दुआएं स्वतः मिलती रहेंगी। हाँ अंतर्मुखता की विशेषता को धारण करो तो सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। तो ये जितना हमें बाहर मुखी में आना सहज लगता है इतना अंतर्मुखी, अंतर्मुखी ये नहीं हम बोलते बोलते भी अंतर्मुखी हो सकते हैं। अंतर्मुखी अर्थात जो आंतरिक चेतना उससे संबंधित ही हमारा चिंतन चले, है ना। बाह्य मुखी तो बहुत रहे हैं, इस मुख से भी वही बातें निकली हैं जो आंतरिक चेतना की ओरिजिनल संस्कार है, तो उसको भी अंतर्मुखी की अवस्था कहेंगे। तो ये बाल था एकांत प्रिय, मिलनसार, साक्षी दृष्टा, नष्टो बोहा, उपराम, देह में रहते विदेही, प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, अथकपन, सदा साक्षी दृष्टा, और भी बहुत सारी बातें हैं। ना उम्मीदवार में, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले, सदा बेहद में रहने वाले, उदार चित, पालनहार, बाबा की बहुत सारी विशेषताएं, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। हम देखा वो पढ़ते पढ़ते बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में, तो लग रहा था आज योग छोड़ते ही पढ़ते रहे, लेकिन फिर योग तो अपनी जगह ही होता है, तो योग में बैठे बैठे अगर उसको चिंतन करे तो उसमें और ही चार चांद लग जाते हैं। ओम शांति।